सत्यवचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
पापों को धो दे, कर दे क्षमा, मुझको कर ले कबूल। पापों को धो दे, कर दे क्षमा, मुझको कर ले कबूल। चौखट को यीशु, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां, कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां, हाँ मिलता है जीवन जहां।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए श्रोताओं का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से फिलिप्पियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के द्वारा हमने परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सुनते और सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हर एक श्रोता भाई बहन अपने जीवन में आपके वचन को ग्रहण कर सके। यदि हमारे भाई बहन किसी प्रकार से निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारी अवस्था में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, अपने पारिवारिक जीवन में बच्चे की आशीष के इंतजार में हैं, आप उन सब पर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। आज अपने वचन के द्वारा हर एक से बातचीत कीजिए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मेरे साथ फिलिप्पियों की पत्री 3:9 को पढ़िए। फिलिप्पियों की पत्री 3:9 में लिखा है, और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मुझे एक बार की घटना याद आती है जिस पुस्तक में लिखा हुआ था कि एक दिन जॉन बनियन खेत से होकर जा रहा था और सोच रहा था कि वह परमेश्वर के समक्ष कैसे खड़ा हो पाएगा। तब यह पद उसके मन में उभरा। वह कहता है कि उसने अकस्मात ही स्वयं को पापी ही नहीं, सिर से पांव तक पाप में लिपटा हुआ देखा। उसे यह बोध हुआ कि वह कंगाल है और प्रभु यीशु ही सब कुछ है। लिखा है वचन में, न कि अपने उस धार्मिकता के साथ। उसने स्पष्ट किया है कि उसकी वह धार्मिकता व्यवस्था पर आधारित थी, व्यवस्था पालन पर। उदाहरण के लिए, विश्राम का दिन पवित्र रखना। परंतु कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस लिखता है कि विश्राम दिवस के विषय कोई किसी का न्याय न करे। मेरे मित्रों, मैं अपने प्रचार कार्य और रेडियो कार्यक्रम के बारे में गर्व कर सकता हूं, परंतु इनका मेरे उद्धार से कोई संबंध नहीं है। मेरे द्वारा कमाई गई धार्मिकता वैधानिक है और परमेश्वर कहता है यशाया की पुस्तक 64 अध्याय उसके 6 पद में कि हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर गंदे कपड़े जमा नहीं करता है, परंतु गंदे पापियों को लेकर वह उन्हें धोकर साफ करता है। पौलुस ने अपनी धार्मिकता का दावा त्याग दिया था। मुझे एक नव दंपति का स्मरण आता है जिन्होंने मन फिराया था। वे अति मनभावन मनुष्य थे। मानव रूप में उनके पास सब कुछ था। उन्हें मेरे संदेश देने से पूर्व गवाही देने के लिए एक बार बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मसीह को ग्रहण करने के बाद अब वे अपनी प्रतिभा प्रभु के लिए काम में लेंगे। सभा के अंत में मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं एक बात से परेशान हूं। आपने कहा कि आपके पास प्रभु की महिमा के निमित्त काम में लेने के लिए प्रतिभा है। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या है। आप लोग रात्रि क्लब में नाचते और गाते थे। आपके विचार में क्या यीशु इसे काम में लेगा? उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने उन्हें समझाया, मसीह को ग्रहण करने के लिए आप उसके पास एक कंगाल पापी के समान आते हैं। आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता है। आप भिखारी हैं। उसके पास सब कुछ है और वह आपको देना चाहता है। मेरे मित्रों, हम इस पद पर विचार करें, उसमें पाया जाऊं, वरन अपने उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। यहां पर विश्वास एक महत्वपूर्ण शब्द है। आप केवल विश्वास के द्वारा ही यीशु की धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। आप न तो उसे परिश्रम द्वारा और न ही उसे पैसों से और न ही चोरी करके प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। आप केवल उसमें विश्वास कर सकते हैं, उस धार्मिकता के साथ जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। यह धार्मिकता उस समय प्रदान की गई थी जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी और आपके पाप धोए गए और वह आपकी धार्मिकता के लिए मृतकों में से जी उठा। यही आपकी धार्मिकता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर नए जन्म से रहित हमारी दशा को सहन नहीं कर सकता है। हम उसके लिए मन लुभावन नहीं है। उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया। यही एक अति अद्भुत बात है। हम उस प्रिय में ग्रहण योग्य होते हैं। पौलुस ने वर्तमान के संबंध में अपना उद्देश्य बदल दिया है। पौलुस अब वैधानिक धार्मिकता कमाना नहीं चाहता है, परंतु परमेश्वर उसकी धार्मिकता और सदाचार नहीं देखेगा या यह नहीं देखेगा कि उसने कलीसिया को कितना सताया। उसने अपने पुराने बही खाते बदल दिए थे और अब वह अपने वर्तमान उद्देश्यों को भी बदल देता है। सुनिए कि वह क्या करता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मेरे प्रियो, कुछ लोगों का सोचना है कि विश्वास द्वारा उद्धार पाने का अर्थ है आचरण और कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उनके विचार में अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने का अर्थ है हाथ पर हाथ रखकर बैठना। यह सच नहीं है। उद्धारक विश्वास आपको कर्म करने पर विवश करता है। याकूब विश्वास के कर्मों अर्थात व्यवस्था के नहीं की चर्चा करते हुए कहता है 2 अध्याय उसके 18 पद में, तू कर्म बिना अपना विश्वास दिखा और मैं कर्मों से अपना विश्वास दिखाता हूँ। मेरे मित्रों, यदि आपका उद्धार हो गया है तो मैं आपके काम देखना चाहता हूँ। यदि आपके काम विश्वास की पुष्टि नहीं करते तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। पौलुस यही तो कहता है, यदि आपका उद्धार हो गया है तो आपकी प्रेरणा की नई दशा होगी, जीवन का उद्देश्य नया होगा, जीवन शैली नई होगी। यदि मसीह हमें आपका विश्वास आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लाता तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। आप वही पुराने मनुष्य हैं, चाहे आप किसी भी कलीसिया में बचपन से क्यों ना जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, हरे के रीति विधियों को पूरा करते हो, फिर भी आप वही पुराने मनुष्य हैं और पुराने जीवन शैली में ही जी रहे हैं। पौलुस ऐसी किसी भी धारणा का खंडन करता है कि आप उधार पाकर आराम से बैठ जाएं और बैठे बैठे स्वर्ग को पहुंच जाएं। पौलुस पवित्र आत्मा से उत्पन्न परिश्रम और प्रयास का प्रदर्शन करता है जो विधि संवत प्रयासों से कहीं महान है। व्यवस्था के अधीन वह दमिश्क जाकर मसीह यीशु के अनुयायियों को बंदी बनाना चाहता था, परंतु अनुग्रह और विश्वास के कारण वह पृथ्वी की छोर तक जाकर प्रभु यीशु के अनुयायी बनाना चाहता था, मसीह यीशु की गवाही देना चाहता था, विश्वास कुछ उत्पन्न करना चाहता है। परंतु स्पष्ट जान ले कि आपके कर्मों का उद्धार से कोई संबंध नहीं है। आप उद्धार के क्रूस से बंधे हैं। परमेश्वर के पास पापी के लिए एक प्रश्न है कि वह उसका उत्तर दे। आप ईश्वर के लिए क्या करेंगे जो आपके लिए मर गया? यदि आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे तो उस विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हो गया। यह धार्मिकता केवल विश्वास के द्वारा ही प्राप्त होती है। उद्धार पाने के बाद आपका जीवन उद्धार संबंधित धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकता है। मसीह में आपका विश्वास आपके लिए प्रेरणा का कारण है कि आप परमेश्वर के लिए जिए। यही कारण था कि पौलुस का जीवन ऐसा हो गया था। मैं उन लोगों को समझ नहीं पाता जो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के प्रचार में मेरी या अन्य शिक्षकों की सहायता कर सकते हैं। मैं जवान हूं या बूढ़ा हूं, परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं ऊंची बुलाहट के पुरस्कार की ओर बढ़ता चला जाऊंगा। मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी है कि यदि वह मुझे जीवित रखेगा तो मैं मरते क्षण तक उसके वचन का प्रचार करूंगा। मेरे मित्रों, मसीह यीशु में हमारा विश्वास उसके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। मैं उसको जानूं। अपने जीवन के अंत तक पौलुस के मन में प्रभु को जानने की लालसा थी। आज कुछ पवित्र जन मुझे सोचने पर बाध्य करते हैं कि उनका ज्ञान पूर्ण है और उन्हें केवल अपने प्रकाश मंडल को प्रतिदिन सुबह सुबह चमका लेना है कि किसी भी समय उठाए जाने के लिए तैयार रहें। परंतु संसार का महानतम प्रचारक पौलुस अपने जीवन के अंत में कहता है, मेरी महत्वाकांक्षा है कि मसीह को और अधिक जानूं, उसके व्यक्तित्व को और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानूं। मेरे जीवन में सबसे बड़ी सांत्वना की बात है मसीह यीशु की सच्चाई। मुझे अपने जीवन में मसीह की सच्चाई की आवश्यकता है। आप मुझ पर उंगली ना उठाएं क्योंकि आपको भी इसकी आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि आप इसको महसूस करते हैं या नहीं। आगे हम देखते हैं उसके साथ दुखों में सहभागी, हमें उसके साथ दुखों में सहभागी होने की कैसी आवश्यकता है। हमारे भजन 22 के संदेश को पढ़कर किसी ने मुझे पत्र लिखा, पत्र पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने लिखा, ओह मुझे कभी बोध नहीं हुआ कि मसीह यीशु ने मेरे लिए कैसा कष्ट उठाया। मेरे मित्रों, मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूँ। मैं उसके दुखों में एक होना चाहता हूँ। मसीह यीशु को और उसके उद्धार के कार्य को जानने से हमारा ध्यान अनंत काल की ओर लग जाएगा। हम उसकी स्तुति में संपूर्ण आनंद जीवन लगा देंगे। यदि आज आप मसीह की स्तुति का आनंद नहीं लेते तो मैं नहीं जानता कि आप स्वर्ग जाना क्यों चाहते हैं। आगे वह कहता है, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। वह कह रहा है कि उसे उठाए जाने में महान आनंद प्राप्त होगा। पौलुस ने इस जीवन में सिद्धता प्राप्त करने की आशा नहीं की थी, अतः वह कलीसिया के उठाए जाने में पूर्ण रूप से सहभागी होने की लालसा में था। जब कोई मुझसे कहता है कि वह कलीसिया के उठाए जाने को नहीं मानता तो मैं प्रभु के साथ उसके संबंध पर संदेह करता हूँ। पौलुस कहता है कि मेरी मनोकामना, मेरा लक्ष्य यह है, मैं उसे जानूं और जानूं ही नहीं, मरे हुओं में से जी उठने अर्थात कलीसिया के उठाए जाने में अर्थपूर्ण और आनंददायक भाग ले सकूं, भाग ले पाऊं। अन्य सबका पुनरुत्थान सहस्त्र वर्षीय राज्य के अंत में होगा और पुराने नियम में या पुराने नियम के पवित्र जन महाक्लेश के बाद जी उठेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मसीह का आगमन क्या अर्थ रखता है? अधिकांश विश्वासियों का सोचना है हमें इस संसार से मुक्ति मिलेगी, परंतु पौलुस के आनंद का कारण है, इसका कारण मुझे उसकी उपस्थिति में पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। उसके आनंद को आप समझने की कोशिश कीजिए। हम फिलिपियों के पत्री 3:12 में पढ़ते हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। सिद्धता प्राप्त न करना पौलुस को उस ओर बढ़ने से नहीं रोकेगा। सिद्धता का अर्थ है पूर्ण परिपक्वता। पौलुस जानता था कि वह अभी वहां नहीं पहुंचा है। वह पत्रस की बात से पूर्णतः सहमत था कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, जिसे हम दूसरा पत्रस की पत्री 3:18 में पढ़ते हैं। मित्रों, हम अगला पद में देखते हैं जहां पर पौलुस की जीवन शैली को हम समझ सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 3:13 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। जी हाँ, वह कहता है मेरी भावना यह नहीं कि पकड़ चुका हूं। पौलुस कहता है कि वह अभी भी दूर है, परंतु आज के पवित्र जन अधिकतर अपने अज्ञान में संतुष्ट हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें सब ज्ञान है, वे केवल यह एक काम कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि केवल यह एक काम करता हूं। सामान्य जीवन में यह इस प्रकार होगा, यदि हम अपना मसीही जीवन वहां ले आए जहां हमें जीवन निर्वाह करना है, वह वास्तव में जटिलता से रहित जीवन होगा। पौलुस अपना जीवन तराश कर एक बिंदु पर ले आया था। जी हाँ, कहता है जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर, वह अपने अतीत की सब बातों को भूलकर अर्थात भूल चूक के साथ छोड़ चुका था कि वह उसके भावी जीवन में बाधक ना हो। वह अपना वर्तमान जीवन भविष्य की आशा में जी रहा था। जब वह उन्नति करेगा और विकास करेगा तो किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है इस विषय पर, आज आने वाला कल है और आपने बीते कल की चिंता की है। मेरे मित्रों, फिलिपियों के पत्री 3:14 में हम आगे पढ़ते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, पौलुस एक धावक से अपनी तुलना करता है जो पुरस्कार जीतने का लक्ष्य साधे हुए है। हमें स्मरण रखना है कि पौलुस ने ओलंपिक खेल देखे थे, उसे खेल देखने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त था। इफिसुस में एक बहुत बड़ा स्टेडियम था जिसमें 100,000 दर्शक बैठ सकते थे, जहां कभी कभी ओलंपिक खेल खेले जाते थे। पौलुस 3 वर्ष इफिसुस में था। मैं विश्वास नहीं करूंगा कि उसने ओलंपिक खेल नहीं देखे थे, क्योंकि उसने ओलंपिक के अनेक उदाहरण काम में लिए थे। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, यह पुरस्कार सांसारिक नहीं था। यह पुरस्कार बादलों में उठाया जाना और मसीह की उपस्थिति में होना था। परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया, इससे परमेश्वर की ऊंची बुलाहट भी कहते हैं। हम उसकी उपस्थिति में होंगे, हम उसके स्वरूप में होंगे। कुछ बातें पौलुस भविष्य से संबंधित बातों को करता है। अब हमें एक बात स्पष्ट समझना है, हमें उद्धार के लिए नहीं दौड़ना है। उद्धार पुरस्कार नहीं है। हमारे पास या तो प्रभु यीशु हो या नहीं हो, हम प्रभु यीशु में विश्वास करें या ना करें, उद्धार का एकमात्र उपाय है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना। जी हाँ, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, प्रत्येक जगत का व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही उद्धार को प्राप्त करता है। यह एक वरदान है और उपहार पुरस्कार से भिन्न होता है। हमारे रेडियो कार्यक्रम विभाग के कर्मियों ने मेरे जन्म दिवस पर एक अति प्रिय उपहार दिया। मैंने वह उपहार लेने से इनकार नहीं किया। मैंने उनसे यह नहीं कहा कि मुझे विश्वास नहीं कि आप वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। मैंने उस उपहार को स्वीकार करके उन्हें धन्यवाद कहा। मुझे उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ जीतने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे उसके लिए परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं थी, वह तो मात्र एक उपहार था। आप अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं, अपने कर्मों से या मेहनत और परिश्रम से नहीं, यह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए उपहार है। अन्यथा कोई भी इस पर गर्व कर सकता है। देखिए इफिसियों के पत्री 2:8-9 में, उद्धार दौड़कर जीतने वाला पुरस्कार नहीं है, यह परमेश्वर का उपहार है, इसे हमें स्वीकार करना है। बस इतना ही मुझे और आपको करना है। अनंत जीवन पाने के बाद अब पौलुस पुरस्कार पाने के लिए दौड़ रहा है। उसके जीवन में मसीह ही सब कुछ है और वह दौड़ रहा है कि मसीह को प्राप्त करे। अब प्रश्न है कैसे। एक दिन उसकी उपस्थिति में पहुंचकर उसका मुख्य विचार है, जब मैं उसकी उपस्थिति में पहुंचूं तो लज्जित न हो। यूहन्ना कहता है कि उसकी उपस्थिति में पहुंचकर लज्जित होना अति संभव है। 1 यूहन्ना 2:28 में लिखा है, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। मेरे मित्रों, आज अनेक विश्वासी मसीह के आगमन की चर्चा करते हैं, परंतु यदि वे जान जाएं कि उसका आगमन उनके लिए कैसा होगा, तो निश्चय ही वे उसके आगमन को स्थगित करना चाहेंगे। यदि आप यह सोचें कि आप अपने लापरवाह मसीह जीवन के उत्तरदायी नहीं होंगे, तो यह आपका भ्रम है। आपको एक दिन प्रभु यीशु के न्याय आसन के समक्ष खड़ा होना है कि अपने जीवन का लेखा दें। मेरा सुझाव है कि आप दौड़ लगाना आरंभ कर दें और उसके लिए जिएं, अर्थात मसीह के लिए, उस पुरस्कार को पाने के लिए। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप अपने मसीही दौड़ में, मसीही जीवन में अब तक कहां पर पहुंचे हैं, किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि आप घर में और परिवार में या कलीसिया में अलग अलग प्रकार का जीवन आप जीते हैं, अपने कार्यस्थल पर, आपके स्कूल में या किसी और अन्य जगह पर, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को जानता है और एक दिन निश्चित है कि आप प्रभु यीशु के सामने अपने कामों का लेखा देंगे। तब क्या आप उसका सामना कर पाएंगे? यदि नहीं तो आज ही अपने जीवन को सुधारना आरंभ कर दें, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं उस पुरस्कार को पाने के लिए मसीह के पास पहुंचना चाहता हूं। क्या आपके अंदर ऐसी लालसा है? मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी और घटी है, आइए आज परमेश्वर का वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें, देखें और प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उससे सहायता मांगे ताकि वह हमारे जीवन में सहायता प्रदान करे और हम भी एक सच्चा मसीही जीवन जी सकें, ताकि हम दंड के लिए नहीं परंतु उस पुरस्कार को पाने के लिए उसके सामने खड़े हो सकें। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जीवन के पथ पर ले चल प्रभु, चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा।